जय राधमा भव कुंज बिहारे।
यह प्रवचन श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला पर 7 मार्च 2004 को श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज द्वारा दिया गया।
राधमा भव कुंज बिहारे। गोपी जाना बाला भाला धारे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञान दिव्यनंदस्य ज्ञानंजनशलक्या चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वापदन्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सगजतं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता लाला कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। तो आदि लीला के 7वें अध्याय में कई बड़े सुंदर श्लोक हैं जिसमें महामंत्र की महिमा का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो मैंने सोचा कि इन श्लोकों को पढ़ें और सुने कि महाप्रभु जी प्रकट हुए थे किस लिए, महामंत्र का प्रचार करने के लिए। वैसे तो महामंत्र शास्त्र में है अनादि काल से, ये नहीं कि महाप्रभु जी ने महामंत्र लेके आए थे। वैसे तो श्रीमद् भागवतम जिसका उपदेश सुखदेव गोस्वामी जी ने दिया था 5000 साल पूर्व, उसमें भी कहा गया है कले दोषे निराज नस्ते का महागुना कीर्तन कृष्ण से मुक्त संग कृष्ण का कीर्तन ही एक साधन है। पर महाप्रभु जी ने महामंत्र का प्रचार बढ़ाया और प्रभुपाद जी ने इसे और भी आगे बढ़ाया। महाप्रभु जी तो ले गए थे हरिनाम की महिमा को भारत की सीमा में, पर वो भविष्यवाणी दे गए थे क्या, पृथ्वी पे आचे जाता नगर अधिगम सर्वत्र प्रचार मोर नाम। एक दिन आएगा जबकि पृथ्वी के हर कोने में मेरी महिमा का प्रचार होगा और हरि नाम का उच्चारण होगा। तो कई साल पहले मुझे एक वैष्णव महात्मा के सुना रहे थे कि हमारे गौड़िया वैष्णव में भी 40 साल पूर्व तक ये विश्वास था कि महाप्रभु जी की वाणी भविष्यवाणी तो है तो वो इस कलयुग में सत्य नहीं निकलेगी, क्योंकि भक्ति सिद्धांत जी ने भी प्रयास किया था विदेशों में कृष्ण भक्ति की स्थापना करने के लिए। भक्ति सिद्धांत जी ने अपने 2 प्रसिद्ध सन्यासियों को भेजा था विदेश, एक को भेजा था इंग्लैंड, एक को भेजा था जर्मनी में कृष्ण भक्ति की स्थापना करने के लिए, पर वो सफल नहीं हुए। एक समय जब उनके शिष्य जो उन्होंने इंग्लैंड भेजा था उनका एक समय परिचय हुआ इंग्लैंड के एक बड़े प्रसिद्ध लॉर्ड से, उसका नाम है भूल गया, कोई लॉर्ड था। जैसे हमारे देश में राज्यसभा लोकसभा है, तो इंग्लैंड में भी हाउस ऑफ कॉमन्स है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो ये लॉर्ड था, जैसे भारत में पहले राय बहादुर टाइटल दी जाती थी रईसों को, तो इंग्लैंड में अभी भी रिवाज है प्रसिद्ध व्यक्तियों को ये टाइटल दिया जाता है। तो ये लॉर्ड ने भक्ति सिद्धांत जी के प्रतिनिधि से पूछा, आप मुझे ब्राह्मण बना सकते हो? उन्होंने कहा क्यों नहीं, हम तुम्हें ब्राह्मण बना देंगे। तो उन्होंने कहा बनाओ ब्राह्मण, पर ब्राह्मण बनने के लिए आपको इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। फिर उसने कहा फिर तो हम ब्राह्मण नहीं बनना चाहते। जब उन्हें ये कहा गया कि क्या आवश्यक है ब्राह्मण बनने के लिए, फिर वो इनकार कर गए। तो भक्ति सिद्धांत जी ने दो सन्यासियों को भेजा था विदेश में, दोनों लौट गए बिना सफलता के। तो उनके तो गौड़िया वैष्णव भी सोच रहे थे क्या महाप्रभु जी की भविष्यवाणी कलयुग में सत्य नहीं निकलेगी, पर उनको पूरा विश्वास था भक्ति सिद्धांत जी को कि क्योंकि महाप्रभु जी स्वयं भगवान है तो जरूर सत्य निकलेगी। इसीलिए उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी को 1922 में आदेश दिया था, और प्रभुपाद जी को पूरा विश्वास था कि अगर वो गुरु के आदेश का पालन करने का प्रयास करें तो महाप्रभु जी की जो भविष्यवाणी है जरूर सत्य निकलेगी, और आज सत्य निकल गई है। जैसे कि इस समय अब हम जब मायापुर धाम में थे इस पंचतत्व की स्थापना के उपलक्ष में, चाइना कम्युनिस्ट चाइना के भक्तों की बहुत बड़ी संख्या थी, तो आज कम्युनिस्ट चाइना जैसा देश जहाँ की वो हिंदू धर्म को पहचानते भी नहीं है, चाइनीज सरकार के अनुसार हिंदू धर्म नाम का धर्म कोई है ही नहीं पृथ्वी पर, क्रिश्चियन धर्म है, इस्लाम है और बुद्धिस्ट है, बस उसके पार वो किसी धर्म को नहीं रिकग्नाइज करते। तो उस जैसे देश में भी आज हजारों भक्त हजारों लोगों ने हरि नाम को अपनाया है। तो ये क्षेत्र महाप्रभु जी की भविष्यवाणी थी जो सत्य निकल रही है, क्यों? क्योंकि वो स्वयं भगवान है, इसलिए उनकी भविष्यवाणी दिन पे दिन सत्य निकल रही है। ठाकुर भक्ति विनोद जो कि एक बड़े महान संत थे, जिन्हें हम चैतन्य महाप्रभु जी की दिव्य शक्ति मानते हैं, नामो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नाम ने गौर शक्ति स्वरूपाय रूप अनुगा पाए। तो चैतन्य महाप्रभु जी की शक्ति है, रूपक गोस्वामी के प्रतिनिधि है। ठाकुर भक्ति विनोद जी ने कहा था कि बहुत ही जल्द एक प्रसिद्ध सेनापति आएगा जो कि सारे विश्व में हरि नाम का वितरण भी करेगा, और एक दिन आएगा जबकि मायापुर धाम में बंगला भक्तों के साथ चीन रूस इंग्लैंड अमेरिका हर विश्व के विदेश के भी भक्त एक साथ मिलकर गाएंगे और गौरंगा महाप्रभु का गुणगान करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु जी क्योंकि स्वयं भगवान हैं, आज हम देख रहे हैं कि उनकी भविष्यवाणी दिन ब दिन सफल हो रही है। तो ये एक श्लोक था जो आज बोर्ड में लिखा है, पहले हम इस श्लोक का उच्चारण करेंगे और फिर इसके पीछे जो इतिहास है उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है? कृष्ण मंत्र है ते हवे संसार मोचना, कृष्ण नाम है ते पवे कृष्णेर चरना। ये श्लोक का उच्चारण चैतन्य महाप्रभु जी कर रहे हैं, और इस अध्याय में छह बड़े प्रसिद्ध श्लोक हैं जिनमें हरि नाम की महिमा महाप्रभु जी कह रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जी वृंदावन आए थे और फिर वृंदावन से लौट रहे थे, तो रास्ते में वो रुके वाराणसी में। वाराणसी में अगर आप जाओ आज भी तो अनेक प्रसिद्ध स्थान हैं जहाँ की चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने दिव्य लीला प्रकट की थी, और वाराणसी में चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी जी को 2 महीने के लिए शिक्षा दी थी। चैतन्य महाप्रभु जी रह रहे थे एक भक्त जिनका नाम था चंद्रशेखर, उनके घर में। चंद्रशेखर जो थे ऊंची जाति के नहीं थे, आजकल हमारे राजनीतिक नेता यही कहते रहते हैं, ऊंची जाति का विरोध करते हैं और नीची जाति को ऊपर उठाते हैं ना, पूरा देश बट गया है जातिवाद, क्या कहते हैं जाति ज्यादा बात है, पर महाप्रभु जी ने इसकी परवाह नहीं की। जो चंद्रशेखर थे ब्राह्मण जाति के नहीं थे, पर जो भी महाप्रभु उनके घर में रहे, क्यों? क्योंकि वो महाप्रभु जी के भक्त थे। महाप्रभु जी ने ये परवाह नहीं की कौन ऊंची जाति का है कौन नीची जाति का है, उन्होंने सिर्फ यही देखा कौन भक्त है कौन अभक्त है। तो चंद्रशेखर के घर में महाप्रभु जी निवास कर रहे थे और भोजन खाने गए थे तपन मिश्रा के घर में। कल मैंने आपको कहा था कि तपन मिश्रा सबसे पहली बार महाप्रभु जी को मिले थे कहाँ? बांग्लादेश में। जबकि महाप्रभु जी छोटे से ही थे जब गए थे, 14 साल की आयु में था बांग्लादेश, उस समय तो बांग्लादेश नहीं था, बंगाली था, यात्रा में गए थे। तो तपन मिश्र मिले थे, तपन मिश्र ने कहा था कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, मुझे ये बताओ, तुम बड़े विद्वान हो, बताओ कि जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। तो महाप्रभु ने कहा कि जीवन का लक्ष्य होना चाहिए भगवान कृष्ण की सेवा, और माध्यम क्या है? हरि नाम का उच्चारण। तो यही तपन मिश्र के घर महाप्रभु जी गए थे भोजन खाने के लिए। तो उस घर में एक महाराष्ट्रन ब्राह्मण मिला। ये जो महाराष्ट्रन ब्राह्मण था वो था महाप्रभु जी का भक्त, पर वाराणसी में उस समय और आज भी एक रूप से मायावादियों का वो जड़ है ना, मायावादियों का अड्डा था वो उस समय भी। तो मायावादियों की एक बड़ी सभा हो रही थी जिसमें हजारों संत उपस्थित थे और उनके नेता थे प्रकाशानंद सरस्वती। तो ये जो प्रकाशानंद सरस्वती उनके जो शिष्य थे वो बार बार महाप्रभु की निंदा करते थे, कहते थे है तो बड़ा संस्कृत का विद्वान, क्योंकि 8 साल की आयु में संस्कृत शिक्षा ग्रहण करना आरंभ किया था, 10 साल की आयु में तो बड़े प्रसिद्ध बन गए थे पंडित, 12 साल की आयु में उन्होंने अपना पाठशाला खोल दिया था संस्कृत का, क्योंकि वो गृहस्थ आश्रम में थे तो महाप्रभु जी निमाई पंडित ने पाठशाला खोला था। तो उनकी महिमा भारत के हर कोने में पहुंच गई थी। हालांकि उन दिनों में आज जैसे टेलीकम्युनिकेशन की सुविधा नहीं थी, पर जब भी महाप्रभु जी की इस चैतन्य महाप्रभु जी की महिमा इस विषय में हर जगह पहुंच गई थी। तो जब वो वाराणसी आए तो ये जो सन्यासी थे कहते अरे वो देखो पागल सन्यासी, इतना बड़ा संस्कृत का विद्वान है, वेदांत स्वतः पढ़ने की जगह पागलों जैसे संकीर्तन करते हैं सड़कों में। जैसे हम लोग भी जब हरिनाम संकीर्तन में जाते हैं कई बार हमारे हिंदू लोग विदेशी नहीं कहते हरा क्या कर रहे हो, हमारे देश की बदनामी कर रहे हो, ये कोई कौन से शास्त्र में लिखा ये हरिनाम करने का, कहते हैं कई बार लोग विदेशों में खास करके कहते हैं जब हिंदू लोग हमें मिलते हैं हरिनाम संकीर्तन है, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज दिस, ये क्या है। तो ये मायावादी सन्यासी जो थे वो समझ नहीं पाए हरिनाम की महिमा, संकीर्तन की महिमा। तो महाप्रभु जी की निंदा कर रहे थे, कह रहे थे क्या ये पागल ये सन्यासी क्या कर रहा है। तो तपन मिश्र और एक महाराष्ट्र ब्राह्मण जो था उनको ये अच्छा नहीं लगा महाप्रभु जी की निंदा सुनते हुए। तो इस ब्राह्मण ने ऐसी योजना की कि महाप्रभु जी इन सन्यासियों को मिल सके, और सन्यासियों की सभा थी जिसमें महाप्रभु जी गए। महाप्रभु जी ने अपने व्यवहार में निम्रता प्रस्तुत किया सदा। चैतन्य चतुर्मृत में कहा गया है कि हमें हमारे आचरण के द्वारा धर्म के नियमों को प्रस्तुत करना चाहिए, नहीं कि हम ऊंचा सिद्धांत बोलें और आचरण हमारा रहे नीचे सिद्धांत का। जैसे कि मैंने कल आपको केशव कश्मीरी की कथा सुनाई थी, जबकि केशव कश्मीरी महाप्रभु जी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए, जबकि महाप्रभु जी ने जो कमजोरियां निकाली उनकी उनकी रचना में उसका उत्तर वो नहीं दे पाए, तो जो निमाई पंडित के जो विद्यार्थी थे वो हंसी उड़ाने लगे, पर महाप्रभु जी ने निमाई ने एकदम रोक दिया, कह रहे हैं केशव कश्मीरी आज थका हुआ है इसलिए उन्हें उत्तर कल देना चाहिए। उन्होंने केशव कश्मीरी का सहयोग दे दिया, उन्होंने कहा आज थके हुए हैं, और उनके शिष्यों को हंसने से उन्होंने उनके विद्यार्थियों को हंसने से रोक दिया। तो ये जो सन्यासी थे ये बैठे थे ऊंचे आसन में, और जब निमाई पंडित वहां पहुंचे, वो बैठे कहां, जहां की लोग अपने पैर धोते हैं मंदिर में जाने के लिए। जैसे कि हर गुरुद्वारे में मंदिर में पैर धोने के लिए एक स्थान रखा जाता है ना, जहां पैर धोते हो फिर अंदर जाते हो, तो निमाई बैठे थे उस स्थान में, और बाकी सब बैठे थे बड़े ऊंचे आसन में। तो निमाई ने, निमाई समझ गए थे कि जो सन्यासी हैं ये अपराध कर रहे हैं। आखिर निमाई पंडित स्वयं भगवान थे, भगवान की निंदा कर रहे थे वो अपराध है। तो निमाई ने अपने दिल, वो बैठे थे जहां के लोग धोते हैं अपने पैरों को, पर अपने शरीर से इतना तेज प्रकाश प्रकट किया, वो प्रकाश जो कि हजारों सूर्यों की रोशनी द्वारा दिखता है। आप एक सूर्य की रोशनी देखते हो, पर उनकी जब हजारों सूर्य की रोशनी की आप कल्पना भी नहीं उस प्रकाश की कर सकते हैं ना। तो निमाई वहां बैठे थे जहां के लोग अपने पैर धोते हैं, और ये सन्यासी महात्मा बैठे थे ऊंचे आसन में, और निमाई ने अपने चेहरे से ऐसा प्रकाश प्रस्तुत किया कि सारे सन्यासियों ने देखकर उन्हें ऐसे लगा कि ये जो सन्यासी है साधारण पुरुष नहीं, पर कोई भगवान ही है। तो निमाई को निमंत्रण दिया था, आओ हमारे साथ बैठो। दूसरे सन्यासियों ने, निमाई ने कहा मैं आपके साथ बैठने का योग्य नहीं हूं, मेरे लिए ये स्थान है, आप सब ऊंचे स्थान के हो तो ऊंचे आसन में बैठ सकते हो, पर मैं तो बड़ा पतित हूं तो मेरे लिए वही स्थान है। और फिर जब इन संतों ने ये प्रकाश देखा जो कि प्रकट हो रहा था निमाई के चेहरे से, तो सब सन्यासियों को लगा कि ये जो है साधारण सन्यासी नहीं। उन्होंने पूछा था पहले, तुम वेदांत सूत्र का अध्ययन क्यों नहीं करते, वेदांत सूत्र का तुम अध्ययन नहीं करते, वेदांत सूत्र का तो अध्ययन करना सन्यासी का सबसे पहला कर्तव्य बनता है। तो निमाई ने कहा कि मेरे जो गुरु महाराज थे उन्होंने देखा मेरी योग्यता का और कहा तुम इतने होशियार नहीं हो, तुम इस युग में वेदांत सूत्र पढ़ने की योग्यता नहीं है तुम्हारे में। क्या योग्यता है, केवल हरे नाम के उच्चारण के लिए। इतने में प्रकाशानंद सारस्वती की एक प्रसिद्ध सन्यासी समझ गए कि ये निमाई जो है स्वयं भगवान है, और फिर उन्होंने अनेक श्लोकों द्वारा विश्वंबर या निमाई पंडित की महिमा का गुणगान किया, और फिर सारे सन्यासी लगभग 10,000 एक साथ निमाई के शरणागत हो गए और क्या बन गए, वैष्णव बन गए। और फिर सबके सब गए वाराणसी के गलियों में हरि नाम संकीर्तन करते हुए। अब अंदाजा लगा सकते हो कि कितना सुंदर कीर्तन किया गया है। महाप्रभु जी की लीला में आप पढ़ते हो कि एक औरत थी जो हमेशा दुखी रहती थी, उसका नाम था दुखी, तो वो सेवा करने, उसका नाम ही था दुखी, तो वो सेवा करती थी, श्रीवास ठाकुर के घर में पानी वगैरह पहुंचा रही थी, पर वो इतनी श्रद्धा से सेवा कर रही थी कि महाप्रभु जी ने उसका नाम बदल दिया, दुखी से बना दिया सुखी। उन्होंने कहा तुम्हारा नाम था दुखी, तुम दुखी थे हमेशा, तुम इतनी सेव प्रशंसा से सेवा करे, तुम्हारा नाम है सुखी। तो ये बात सच है, हम सब कृष्ण भक्ति में जुड़ने से पहले हम सब का नाम है दुखी दास या दुखी दासी, दास भी नहीं, मिस्टर दुखी और मिस दुखी, पर सेवा करने के बाद आप सुखी बन जाते हो। जैसे कि निरंतर दास ठाकुर के इस प्रसिद्ध भजन में वो क्या कहते हैं, हा प्रभु नित्यानंद प्रेम नंद सुखी, आप क्योंकि नित्यानंद जी, नित्य का मतलब है सनातन, आनंद का मतलब है आनंद ही आनंद, आप नित्यानंद जी क्योंकि परम भगवान की सेवा में सदा जुड़े रहते हो, आप सदा सुखी रहते हो, और मैं जो हूं पतित व्यक्ति नरोत्तम दास ठाकुर मैं हूं बहुत दुखी, आप कृपा करके मेरे ऊपर कृपा कीजिए कि मैं भी सुखी बन जाऊं। तो अगर आप सुखी बनना चाहते हो तो हमें क्या करना चाहिए, कृष्ण भक्ति में जुड़ना चाहिए, और कोई माध्यम नहीं है। अगर हम सोचे कि हम सुखी बन सकते हैं किसी भौतिक प्रयास के कारण तो ये गलत विचार है। तो ये जो औरत थी इसने श्रीवास ठाकुर के घर में बड़ी प्रेम से पानी पहुँचा कर दे दी थी महाप्रभु जी को, और फिर महाप्रभु ने कहा तुम दुखी नहीं हो, तुम हमेशा उदास रहती हो, तुम्हारा नाम है, उसका नाम ही था दुखी, तुम्हारा आज से नाम है सुखी। उसके बाद वो इतनी खुश हो गई, उसके बाद वो हमेशा खुश रहने लगी। तो हम सब जब सेवा में जुड़ते हैं तो उसके पश्चात क्या बन जाते हैं, सुखी। तो ये श्लोक में कहा जा रहा है कि हरि नाम की महिमा से ही भौतिक संघर्ष से हमें छुटकारा प्राप्त हो सकता है, और हरि नाम के उच्चारण से ही भगवान के चरण कमलों का दर्शन आप प्राप्त कर सकते हो। तो अगला श्लोक में है, नाम विनु कली कले नहीं अर धर्म सर्व मंत्र सरा नाम ए शास्त्र मर्मा। कहा गया है
इस कलयुग में भगवान नाम के कीर्तन से बढ़कर कोई अन्य धर्म नहीं है, क्योंकि ये समस्त वैदिक स्तोत्रों का सार है, यही सारे शास्त्रों का तात्पर्य है।
ये भी महाप्रभु जी ने कहा, महाप्रभु जी ने कहा कि इस कलयुग में हरि नाम ही सबसे महत्वपूर्ण है, और यही है सारे वैदिक शास्त्रों का निचोड़। प्रभुपाद जी जब मंदिरों में मूर्ति स्थापना करते थे अपने भक्तों के द्वारा, कई बार भारत में जो भारत के जो पंडित वगैरह हैं वो इस विषय की आलोचना करते थे, कहते थे क्या स्वामी जी ने अपने अंग्रेजी भक्तों के द्वारा मूर्ति स्थापना कर दी। तो जब कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना कर रहे थे वृंदावन में, तो प्रभुपाद जी ने प्राण प्रतिष्ठा के लिए ब्राह्मणों को बुलाया था, ब्रज के ब्राह्मणों को। पर प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद प्रभुपाद जी ने कहा कि अब हम लोग हरि नाम संकीर्तन करेंगे जो असली प्राण प्रतिष्ठा है। वो ब्राह्मणों को बुला दिया था क्योंकि ये रिवाज था वृंदावन में, तो लोग ये नहीं कहें कि ठीक स्थापना है। पर प्रभुपाद जी ने ये कहा कि असली स्थापना है ये हरि नाम के द्वारा, तो ये हरि नाम जो है वो है असली धर्म, और वैदिक शास्त्रों का जो निचोड़ है वो क्या है, वो है हरि नाम। तो आगे चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि मेरे गुरु ने हरि नाम की महिमा बताने के बाद ये कहा कि ये हरि नाम को हमेशा अपने जीभ में रखो, हमेशा, यही नहीं कि केवल थोड़े समय के लिए जीभ में रखो और फिर जीभ में कुछ और रखो। उन्होंने कहा कि हमेशा सदा हरि नाम को रखो, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जी ने शिक्षा सके कि तीसरे श्लोक में क्या कहा है, त्रिनादपि सुनी चेना तरूर पिशाचना अमानी न मंदना देना कीर्तनादि सदा, कीर्तनादि सदा हरि का क्या अर्थ, कीर्तनादि सदा हरि का अर्थ है सदा हरि के नाम का उच्चारण करना। तो महाप्रभु जी का आदेश क्या है कि हम सदा हरि का नाम का उच्चारण करें। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने माया प्रकाशानंद सारस्वती और उनके शिष्यों को हरि नाम की महिमा का उपदेश देते हुए कहा कि सारे वैदिक साहित्य का निचोड़ क्या है, हरि नाम। उनके गुरु ने क्या आदेश दिया है कि हरि नाम का हमेशा कहाँ रखो, जीभ में, अपने गले में। और इसके पश्चात उन्होंने एक और प्रसिद्ध श्लोक की रचना की, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नस्तेव 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 एव गति नस्तेव। इसका अनुवाद,
केवल इस कलयुग में आध्यात्मिक उन्नति के लिए हरि नाम हरि नाम हरि नाम के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है, कोई अन्य विकल्प नहीं है, कोई अन्य विकल्प नहीं है।
तो चैतन्य महाप्रभु जी ने इस प्रकार सारे मायावादी सन्यासियों को क्या किया, वैष्णव बना दिया। इसी प्रकार महाप्रभु जी ने एक समय बुद्धिस्ट, जो बुद्धिस्ट हैं उनसे मिले। असल में बुद्धा जी जो है भगवान कृष्ण के अवतार हैं, पर आजकल के जो बुद्धिस्ट हैं उनका से आज की तो बात छोड़ो, आज के बुद्धिस्ट की तो आज लोग बुद्धिस्ट धर्म को अपनाते हैं नाम के लिए, क्योंकि बुद्धिस्ट धर्म में इतनी छूट है, मांस खाना शराब पीना जो करना है करो, कुछ भेद नहीं। जो दलाई लामा है जो कि बुद्धिस्ट के गुरु जी हैं ना, वो तो हर चीज़ खाते हैं शराब पीते हैं सब। तो जो बुद्धिस्ट हैं एक समय उनके गुरु जी का चैतन्य महाप्रभु से डिस्कशन हुआ था, वार्तालाप हुआ था, और महाप्रभु जी इन्होंने हरा दिया, जैसे आजकल क्रिकेट मैच होता है, एक टीम दूसरी टीम को हराती है, तो प्राचीन समय में फिलोसफिकल डिस्कशन होते थे जिसमें कई बार एक पंडित दूसरे को हरा देता था। तो ये जो बुद्धिस्ट पंडित के गुरु के जो शिष्य थे उन्हें बड़ा अपमान महसूस हुआ, इस निमाई पंडित ने हमारे गुरुजी को हरा दिया डिस्कशन में, इनकी बेइज्जती कर की जाए। तो उन्होंने एक पीतल की थाली में बासी सड़ा हुआ खाना रखा और वो प्लेट में जा रहे थे महाप्रभु जी को अर्पण करने के लिए। और उन्होंने महाप्रभु से कहा, हम आपके लिए महाप्रसाद लाए हैं। तो जैसे वो महाप्रसाद की प्लेट महाप्रभु को पहुंचा रहे थे, ऊपर से एक ईगल, एक बाज आई। उस बाज ने उस सड़े खाने को खा लिया और जो पीतल की थाली थी उसे उठाकर गिरा दिया गुरु के सिर में। वो पीतल की थाली जब इतना भारी वजन की होगी, गिरी गुरु के सिर में, तो गुरु जी बेहोश हो गए। तो गुरु जी जब बेहोश हो गए तो सारे जो शिष्य थे उनके हृदय में पछतावा होने लगा। उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारी बुरी नीयत थी, हम महाप्रभु जी का अपमान करने जा रहे थे, अभी देखो भगवान ने हमें सजा दी। तो फिर वो गए महाप्रभु जी के पास, महाप्रभु जी से कहने लगे कि हमने ये दोषी विचार से हम आए थे और ये इस थाली में सड़ा हुआ खाना था, महाप्रसाद नहीं था। अब हमारे गुरु जी बेहोश हो गए हैं हमारे अपराध के कारण, कृपा करके आप उन्हें होश में लाओ, तो क्या करना चाहिए? महाप्रभु जी ने कहा, तुम अपने गुरु के कानों में जाकर हरे नाम का उच्चारण करो। और शिष्य ने यही किया, जाकर गुरु के कानों में हरे कृष्णा सुनाया। और जैसे महामंत्र सुनाया, गुरु जी होश में आ गए और सारे बुद्धिस्ट हैं ये चमत्कार देखकर बड़े आकर्षित हो गए। और फिर सारे बुद्धिस्ट जो थे उस समय महाप्रभु जी के भक्त बन गए। तो महाप्रभु जी की अनेक दिव्य लीलाएं हैं। जैसे कि मैंने कल कहा था, महाप्रभु जी ने एक साल के लिए कीर्तन किया था जिसके द्वारा 200 आम पैदा हुए थे। महाप्रभु जी ने अद्वैताचार्य को भी अपना विराट रूप दिखाया था, विराट रूप, वही विराट रूप दिखाया जो कि कृष्ण भगवान ने दिखाया था किसे, अर्जुन को, कुरुक्षेत्र के युद्ध में। उस विराट रूप में अद्वैताचार्य ने क्या देखा, सारे देवताओं को बिल्कुल वही विराट रूप उन्होंने भी प्रकट किया था। इसी प्रकार श्रीवास के घर में एक समय महाप्रभु जी ने अपना महाप्रकाश रूप प्रस्तुत किया, अपने 5 प्रसिद्ध भक्तों को, जिनमें एक थे खोलावेचर श्रीधर। खोलावेचर श्रीधर जो थे बड़े प्रिय भक्त थे, भौतिक दृष्टि से तो ज्यादा धनी नहीं थे। आप कहोगे महाप्रभु जी के तो सारे ही भक्त गरीब थे, तो हम भी गरीब रहेंगे क्या? नहीं, कई धनी भक्त भी थे। खोलावेचर श्रीधर, उनका धंधा क्या था, केले बेचते थे फल। निमाई जो है रोज उनकी दुकान से गुजर कर जाते थे, रोज। हम जब नवदेव धाम का परिक्रम करते हैं तो उस स्थान से गुजर कर जाते हैं जहाँ की खोलावेचर श्रीधर की दुकान थी। तो निमाई रोज खोलावेचर श्रीधर की दुकान के आगे से जाते थे। खोलावेचर श्रीधर का एक गुण ये था कि वो सदा निरंतर हरि नाम का जाप करते रहते थे, दिन में भी और रात में भी। इतना तक कि रात के समय वो हरे कृष्णा करते थे थोड़ी जोर से, तो जो उनके पड़ोसी है ना वो शिकायत करते थे। तो उनके जो पड़ोसी है वो कहते थे, क्या तुम भूत सवार हो गए हो, तुम सोते नहीं हो, रात को हमें सोने नहीं देते, तुम खाना क्यों नहीं खाते? और महाप्रभु जी उनकी दुकान में जाते थे और कहते थे, देखो भाई खोलावेचर श्रीधर, तुम तो गरीब हो, दुर्गा की पूजा क्यों नहीं करते, अमीर बन जाओगे। पर खोला भाई श्रीदान में पूरा विश्वास था कृष्ण भक्ति में और महाप्रभु जी. महाप्रभु जी उनकी दुकान में जाते थे और उनसे सौदा करते थे. पहले पूछते क्या भाव है, तो भाव बताता नहीं नहीं तुम्हारा भाव बहुत महंगा है, सस्ता दाम में दो. खोला भाई श्रीदान की आमदन जो थी छोटी सी थी, और पर वो आमदन का 50% वो खर्चते थे गंगा नदी की उपासना में. और उन्हें बड़ा आनंद आता था जब ये गिराक रोज आते थे, महाप्रभु रोज आते थे गिराक के रूप में उनकी दुकान में. असल में खोला भाई श्रीधर के विषय में कहा गया है उनको रहते थे एक कमरे में, और इस कमरे के ऊपर कोई छत भी नहीं थी, और उनके पास केवल एक ही धोती थी, और उस एक धोती में भी 11 छेद. आपके पास उसे एक धोती से तो शायद ज्यादा है सब. तो एक समय महाप्रभु जी ने जब निर्णय कर लिया था अपने महाप्रकाश रूप को प्रस्तुत करने के लिए, तो उन्होंने अपने भक्तों को बोला जाओ खोला बेचा श्रीधर को लेकर आओ. तो घर घर वो जा रहे थे खोला बेचा, उन्हें पता नहीं था खोला बेचा श्रीधर का घर कहाँ है. महाप्रभु जी ने कहा तो वो है घर जहाँ की वो सदा निरंतर हरे नाम का जाप कर रहा है. तो जब वो खोला बेचा श्रीधर के घर पहुंचे, उन्होंने कहा कि महाप्रभु आपको निमंत्रण दे रहे हैं आने के लिए, वो तो बहुत खुश हो गए. तो महाप्रभु जी ने जब अपना महाप्रकाश रूप प्रकट किया, तो उन्होंने अपने 5 प्रसिद्ध भक्तों से पूछा जो वर चाहिए मांगो मेरे से. खोला बेचा श्रीधर को कहा जो ऐश्वर्य चाहिए मांगो मेरे से. खोला बेचा श्रीधर ने कहा कि अगर आप मुझे कोई वर देना चाहते हो तो ये वर दीजिए कि हर जन्म में मैं आपके साथ हूं, और हर जन्म में आप आओ मेरी दुकान में रोज सौदा करने के लिए. अगर वो भौतिक दृष्टि से तो गरीब थे, कुछ मांग सकते थे बड़ी आसानी के साथ, पर उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दो कि हर जन्म में आप मेरे दुकान में आओ ग्राहक बनकर. चैतन्य महाप्रभु जी का इतना स्नेह था. तो खोला बेचा श्रीधर सारी रात हरि नाम करते रहते थे. उनके पड़ोसी जो है वो शिकायत करते थे तुम्हारे कीर्तन के कारण हमें नींद नहीं आती रात को. और छोटी सी आमदन का बड़े सादे रूप से रहते थे. छोटी सी आमदन का 50% वो खर्चते थे गंगा नदी की सेवा में. जब महाप्रभु जी ने अपना कीर्तन आंदोलन आरंभ किया, तो मुसलमान प्रतिनिधियों ने शिकायत की चंद काजी से. तो महाप्रभु जी एक बहुत बड़ा मोर्चा ले गए. उस मोर्चे में 1,00,000 भक्त उपस्थित थे. ये मोर्चा में पहुंचे चंद काजी के घर, चंद काजी दूर पर देख कर ही छुप गए. उन्हें डर था ये बड़ा मोर्चा आकर. फिर महाप्रभु जी ने सूचना भेजी कि भाई घबराओ मत. महाप्रभु ने कहा अरे भाई ये कैसा धर्म है जिसमें तुम अपनी माता की कदर नहीं करते. 7 माताएं हैं हर व्यक्ति की. 1 माता जिसके गर्भ से आप जन्म लेते हो, गुरु की पत्नी, पृथ्वी, गाय, ब्राह्मण, गाय को भी माता माना जाता है. तो महाप्रभु जी ने कहा ये कैसा धर्म है जिसमें तुम माता को कत्ल करते हो. तो उस चंद काजी ने स्वीकार किया कि हमारे धर्म में कमजोरियां हैं. और चैतन्य महाप्रभु जी ने चंद काजी को मिलने से पहले बहुत बड़ा कीर्तन किया था, कई घंटों का एक साथ. तो इस कीर्तन करने के पश्चात उन्हें प्यास लग रही थी. जब प्यास लग रही थी वो पानी पीने गए. पानी पीने कहाँ गए? खोला बेचा श्रीधर के घर. खोला बेचा श्रीधर के घर में एक ही बर्तन था, एक ही ग्लास. उसी ग्लास जिससे खोला बेचा श्रीधर रोज पानी पीते थे, जिस ग्लास में वो खाना खाते थे, उस ग्लास को लेकर उन्होंने पानी डालकर पानी पीना शुरू कर दिया. जब खोला बेचा श्रीधर ने देखा कि महाप्रभु जी उनके झूठे ग्लास में पानी पी रहे हैं, उन्होंने कहा आप क्या कर रहे हो? ग्लास छीनने की कोशिश की उनके हाथों से. और महाप्रभु ने कहा नहीं. उन्हें कहा ये तो मेरे भक्त का है. तो महाप्रभु जी ने उस ग्लास से पानी पिया. और फिर जब चंद काजी के साथ वार्तालाप हुआ, तो महाप्रभु जी ने हरि नाम की महिमा जो है उसकी महिमा को स्थापित किया। वो इसलिए चंद काजी आज भी हमारे भक्त जब मायापुर जाते हैं चंद काजी की समाधि में जाकर प्रणाम करते हैं, क्योंकि चंद काजी ने यह आदेश दिया था आगे की पीढ़ियों को कि किसी रूप में आप हरि नाम संकीर्तन को में किसी प्रकार की अड़चन नहीं डालना। तो महाप्रभु जी किस प्रकार उन्होंने सर्वोबलाचार्य को आकर्षित किया भक्ति के प्रति, प्रकाशानंद सरस्वती उनके 10,000 शिष्यों को आकर्षित किया, जो बुद्धिस्ट थे निराकारवादी उन्हें भी आकर्षित किया, फिर चैतन्य महाप्रभु जी ने चंद काजी को आकर्षित किया, फिर ये जो सर्वोपरि भट्टाचार्य थे वो भी बड़े उच्चे कोटि के मायावादी थे उन्हें भी आकर्षित किया। तो चैतन्य महाप्रभु जी जब यात्रा करते थे अलग अलग घरों में रहते भक्तों के घरों में रहते थे, तो उन्होंने कहा कि अब मैं जा रहा हूँ दक्षिण भारत की ओर। तो सर्वोपरि भट्टाचार्य ने कहा 5 दिन और रुक जाओ, दिल भरा नहीं। तभी महाप्रभु जी उनके घर में 5 दिन और रुक गए और फिर उन्होंने यात्रा शुरू की। पहले तो महाप्रभु जी अकेले जाने वाले थे, पर फिर नित्यानंद जी और सर्वोपरि भट्टाचार्य ने कहा नहीं आप इतनी लंबी यात्रा अकेले नहीं कर सकते, तो उन्होंने साथ में किसे भेजा, काला कृष्णदास को भेजा। तो महाप्रभु जी ने दक्षिण भारत की जब यात्रा शुरू की, उस यात्रा शुरू करने से पहले सर्वोपरि भट्टाचार्य ने उन्हें सूचना दे दी थी कि जब आप दक्षिण भारत में पहुंचोगे तो वहां आपको एक बड़े प्रसिद्ध भक्त मिलेंगे जिनका नाम रहेगा रामनंदन रॉय। रामनंदन रॉय जो थे वैसे तो मद्रास के राजपाल थे, पर राजपाल होते हुए भी भगवान के भक्त थे। रामनंदन रॉय के विषय में कहा जाता है कई बार कि वो विशाखा के अवतार हैं, कई बार कहा जाता है अर्जुन के अवतार थे। राजपाल होते हुए अपने आप को तुच्छ सेवक मानते थे और उस समय उड़ीसा का राजा था महाराज प्रताप रुद्र, और जो मद्रास था वो भी थे उसके राजा भी थे महाराज प्रताप रुद्र। तो जब गोदावरी नदी के किनारे विद्यानगर शहर में महाप्रभु जी पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि एक संत राजपाल को पलकी में उठाकर लगभग 100 व्यक्ति पलकी में उन्हें उठा रहे हैं। तो वो समझ गए कि यही है वो व्यक्ति जिसकी चर्चा सर्वोपरि भट्टाचार्य ने की थी, और फिर दोनों गले मिले और बड़ा सुंदर वार्तालाप हुआ गोदावरी नदी के किनारे, जहाँ की महाप्रभु जी ने अनेक प्रश्न पूछे और रामनंद रॉय ने उत्तर दिया। इस विषय पर मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ, भगवान ने प्रश्न पूछे और उनके भक्त ने उत्तर दिया। आप कहोगे ये कैसे संभव हो सकता है, अक्सर तो हम प्रश्न पूछते हैं और भगवान उत्तर देते हैं, यहाँ तो उल्टा ही साहब, भगवान प्रश्न पूछ रहे हैं उनके भक्त उत्तर दे रहे हैं। तो कारण क्या है, भगवान अपने भक्तों की महिमा बढ़ाते हैं। जैसे कि जब महाप्रभु जी ने अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया तो उन्होंने भक्तों का आदेश दिया था घर घर जाकर प्रचार करो, प्रचार के दौरान जगाई मदाई के द्वारा नित्यानंद का अपमान हुआ, पर नित्यानंद का उद्धार किसके माध्यम से हुआ, नित्यानंद जी की कृपा से है कि नहीं, उनका उद्धार हुआ नित्यानंद जी की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा नहीं। तो भगवान अपने भक्तों की महिमा बढ़ाने के लिए उन्हें माध्यम बनाते हैं, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जी ने पूरे भारत में हरि नाम का प्रचार किया, पर हरि नाम के प्रचार की विश्व में प्रचार करने की महिमा किसके द्वारा उन्होंने की, प्रभुपाद जी के द्वारा। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने अनेक प्रश्न पूछे और रामनंदन रॉय ने उत्तर दिया। जैसे कि आप देखते हो जब भीष्मदेव जी श्री त्याग रहे थे तो उस समय भगवान श्री कृष्ण पांडव भाइयों देवता देवियों के साथ उपस्थित थे, पर भगवान ने युधिष्ठिर से कहा तुम पूछो कि जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए, और सब उपस्थित थे, भगवान उपस्थित थे, और भीष्म देव ने उपदेश दिया। तो भगवान अपने भक्तों की महिमा बढ़ाने के लिए उनके दास भी बन जाते हैं और उनसे प्रश्न भी पूछते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने अनेक प्रश्न पूछे, पर एक प्रश्न ये पूछा था कि कौन सा गीत व्यक्ति को हमेशा गाना चाहिए। तो महाप्रभु रामानंद रॉय ने कहा कि वो गीत जिसके द्वारा राधा कृष्ण की प्रशंसा हो, और राधा कृष्ण की प्रशंसा किस कौन से गीत के द्वारा होती है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान वो श्री रंगम मंदिर में पहुंचे। श्री रंगम मंदिर में उन्होंने देखा एक अनपढ़ ब्राह्मण गीता को सामने रखा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं और उसके चारों तरफ लोग खड़े हैं जो कि हंस रहे हैं। तो महाप्रभु जी गए, पर महाप्रभु जी इस ब्राह्मण को देखकर ये पहचान सके कि जो ब्राह्मण है शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रकट कर रहा है। तो महाप्रभु जी गए इस ब्राह्मण के पास। महाप्रभु जी ने पूछा कि इसके कि आंसू क्यों बह रहे हैं, तुम्हारे नेत्रों से क्या कारण है? तो इस ब्राह्मण ने कहा कि मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया था रोज भगवत गीता पढ़ने के लिए, पर मैं क्योंकि अनपढ़ हूं, कई श्लोकों का उच्चारण मैं ठीक करता हूँ और कईयों के उच्चारण में मैं गलती करता हूँ। तो मैं जब मैं गलती करता हूँ तो लोग हंसते हैं, और गांव के लोगों को पता था कि ये अनपढ़ ब्राह्मण है, तो गांव के लोग सोचते थे अनपढ़ है पर दिखावा कर रहा है कि बड़ा पंडित है, तो इस दृष्टि से भी वो हंस रहे थे। तो महाप्रभु जी ने फिर आगे ये पूछा कि परे भक्षुद भक्ति के लक्षण कैसे प्रकट हो रहे हैं? तो उसने कहा कि जब मैं भगवान की वाणी को पढ़ता हूँ, जब मैं भगवान के उपदेश को पढ़ता हूँ, मुझे इतना आनंद आता है कि मेरे नेत्रों से आंसू बहते हैं, मेरे बाल खड़े हो जाते हैं और मेरा शरीर जो है कांपने लगता है। तो महाप्रभु जी ने उस ब्राह्मण को गले लगाया और कहा तुम असली गीता के संदेश को समझ गए हो। तो प्रभुपाद जी इन श्लोकों के तात्पर्य में समझाते हैं कि ब्राह्मण जो है उसमें एक ही गुण था, वो गुण यह था कि वो अपने गुरु के आदेश का पालन कर रहा था। गुरु का आदेश था रोज नियमित रूप से 18 अध्याय पढ़ने के लिए, और क्योंकि वो गुरु के आदेश का प्रयास कर का पालन कर रहा था, उसका ये परिणाम हुआ क्या कि स्वयं भगवान ने आकर उसे दर्शन दिया। तो अगर हम भी उसी प्रकार आदेश का पालन करें तो हमारा भी वो सौभाग्य हो सकता है। तो ऐसे कृष्णदास कविराज जी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से अंधा व्यक्ति देख सकता है, गूंगा व्यक्ति बोल सकता है, बहरा व्यक्ति सुन सकता है, वो लंगड़ा व्यक्ति नहीं चल नहीं पहाड़ों के पार जा सकता है। चलना तो इतना आसान कठिन नहीं है, पहाड़ों के पार जाना कठिन है। तो कृष्णदास कविराज जी का कहना है कि चैतन्य महाप्रभु जी कृपा से असंभव कार्य संभव हो जाता है, और उनकी कृपा के बिना संभव कार्य भी असंभव हो जाता है। तो कृष्णदास कविराज जी कहते हैं कि हमें चैतन्य महाप्रभु जी के शरणागत होना चाहिए। तो हम लोग महाप्रभु जी की महिमा का गुणगान करते हैं, स्मरण करते हैं, पर हमारा असली भाव होना चाहिए क्या कि हमने तन मन धन से चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा के आधार पर ही रहना है। और महाप्रभु जी ने कहा कि चेतना को शुद्ध बनाने के लिए एक हरे नाम का उच्चारण करो, दूसरा श्रीमद् भागवतम भागवत गीता का अध्ययन। इसलिए हम इस्कॉन के हर मंदिर में रोज नियमित रूप से भागवतम गीता का अध्ययन करते हैं। तीसरा भक्तों की संगत का लाभ। चौथा भगवान के आर्च विग्रह की पूजा। हरे कृष्ण।